Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे कि बेटियां सचमुच सौभाग्यशाली होती हैं परिवार के लिए, इसीलिए उनके नाम के आगे भी सौभाग्यवती भी लिखा जाता है। वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लड़कियां घर में आती हैं, बेटियां जन्म लेती हैं, तो पूरे परिवार का माहौल खुशहाल हो। और ज़्यादातर ऐसा होता है, अब समय बदल गया है, माहौल बदल गया है, लोगों की सोच भी बदल गई है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने में आता है जहाँ पर शायद शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं 19-20 देखने को मिलता है। लेकिन कल भी मैं एक बात आपको कह रहा था कि हर एक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के ही आता है और अपने भाग्य का ही खाता है। बहुत ही प्रेरक सी एक कहानी है मित्रों, कि एक राजा की 3 बेटियाँ थीं। अब राजा को बड़ा अभिमान रहता था कि मैं सबको खिला पिला रहा हूँ, मतलब अपने बच्चों को भी, अपनी प्रजा को भी, ये अभिमान उसे बड़ा था। अब एक बार उन्होंने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और कहा, बड़ी बेटी से कहा कि बताओ तुम किसका खाती हो। तो उसने कहा कि पिताजी ऑफकोर्स आपका ही खाती हूँ, आप हमें खिलाते पिलाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बेटी ने भी ऐसा ही जवाब दिया। तीसरी बेटी को जब बुला के उन्होंने यही प्रश्न किया कि बताओ तुम किसका खाती हो, तो तीसरी बेटी ने, जो सबसे छोटी थी, उसने कहा कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, मैं तुम्हें खिला पिला रहा हूँ, बचपन से पाल पोस रहा हूँ, और तुम ये कह रही हो कि तुम अपने भाग्य का खाती हो। तो उसने कहा कि हरेक अपना भाग्य लेके ही आता है अपने कर्मों के अनुसार, और वही खाता है, और ज्ञान यही कहता है, हमारे शास्त्र यही कहते हैं। मेरा तो यही विचार है, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकती। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जंगल में छोड़ाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है महल में, मैं देखता हूँ कि अपने भाग्य का कैसे खाती है। अब उसे महल से बाहर निकाल दिया गया, वो जंगलों में छोड़ दिया गया। अब जंगल में भटक रही थी, वहीं से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने देखा कि ये शायद कोई राजकुमारी है और शायद यहाँ भटक गई है। जब बात हुई, इसने अपनी सारी कथा उसे सुनाई, तो राजकुमार उसे अपने यहाँ अपने महल में ले गए और उनका विधिवत विवाह हो गया, वो वहाँ सुखी रहने लगी। अब यहाँ इस राजा के यहाँ एक दूसरे राजा ने, पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया, इनको हरा दिया, बेदखल कर दिया। अब ये दर दर की ठोकरें खाने लगे। अब जब बेटी को, जो छोटी बेटी थी, उसे पता चला, ये अपने पिता के पास आई, कहा कि पिताजी आप निराश मत होइए, हमारे यहाँ भी एक सेना है, हम पुनः वहाँ पे चढ़ाई कर सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि छोटी बेटी, इसको तो मैंने जंगल में छोड़ दिया था, ये महल में कैसे पहुँच गई, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि पिताजी मैंने आपको कहा था ना कि हर एक व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है, कोई किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर रहा है, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई और अब मैं महल में हूँ, बहुत सुखी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो जहाँ पे उसकी बेटी की शादी हुई थी, वहाँ से पूरा लश्कर लेके वो गए, अपने राज्य में फिर से चढ़ाई की और जिसने जीत लिया था उसे हराया, बेदखल किया और राज्य प्राप्त कर लिया, और इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच हरेक अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य लेकर आता है और वही खाता है। तो मित्रों, यदि बेटी घर में आई है तो जरूर वो भी अपना भाग्य लेकर के आई है, और कई स्थानों पे तो कितनी फलीभूत हो जाते हैं परिवार, आपने देखा होगा, व्यापार बहुत बढ़ जाता है परिवार में, कितनी खुशहाली हो जाती है, सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो हम ऐसा क्यों सोचें कि हमारे घर में यदि आई है बिटिया तो शायद अब इसे पढ़ाना लिखाना बड़ा करना पराया धन है, शादी करके बहुत दहेज देना पड़ेगा। इन सब विचारों को दरकिनार कीजिए, नए विचारों के, आधुनिक विचारों के, या अच्छे विचारों के बनिए कि लक्ष्मी आई है हमारे घर में, सरस्वती आई है, देवी आई है, इस भावना से जब उसका पालन पोषण करेंगे तो घर में बरकत होगी। ऐसी सुंदर बात और प्रेरक प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
इस प्रसंग पे आप क्या कहेंगे?
सुंदर बात है कि अनेक लोग यही सोचते हैं कि 4 बेटी हो गई, अब तो सबको देना ही पड़ेगा, हमारे घर में तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन तुम्हारे घर में वो भाग्यवान लड़की आ गई है। ये सत्य है कि कोई भी भाग्यवान आत्मा यदि जन्म लेती है तो घर भरपूर हो जाता है, और दूसरे के द्वारा दी हुई चीजों से घर भरपूर होता है, ये मान्यता ही गलत है। हम रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, एक बाप ने अपनी लड़की की शादी की, 35 लाख खर्च किए, घर भर दिया दूसरे का, लेकिन एक मास के बाद ही लड़की घर वापस आ गई, सब कुछ छोड़ के आ गई, क्या हुआ? तो इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता। महत्व श्रेष्ठ भाग्य का है, महत्व श्रेष्ठ विचारों का है, महत्व मनुष्य के जीवन में जो सद्गुणों के गहने उसने लगाए हैं, पहने हैं, जो श्रेष्ठ गुणों की सुगंधी जीवन में भरी है, जो अलौकिक खजाना जमा किया है, असली चीज तो वो है। इसलिए हर आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य लेकर ही जन्मती है। इस सत्य सिद्धांत को सभी को स्वीकार करना ही चाहिए। ये सत्य सिद्धांत है, ये कर्म फिलोसॉफी है, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए लड़कियां, हो सकता है कोई बहुत बड़ा भाग्य लेकर आई हो, उसके जन्म लेते ही बाप का भी भाग्य खुल गया हो।
और कई बार ये देखने में आता है भ्राता जी की लड़कियां पैदा हुई, बिजनेस में इतनी बरकत होने लगी, बहुत ज्यादा बरकत देखने में,
और भी संबंध सुधर गए, घर में शांति छा गई, ऐसा लगा कि बस जैसे कोई बुरी आपदा हट गई हो घर से। ये बहुत लोग हमें अनुभव सुनाते हैं। इसलिए ये जानते हुए हमें लड़कियों को वेलकम करना चाहिए और बहुत खुश होना चाहिए।
बिल्कुल प्रताप जी, एक सोच की बात आपने कही थी, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश चाहूंगा कि जैसे आती हैं लड़कियां, बेटियां आती हैं, खैर शहरों की बात तो नहीं, लेकिन चलिए गाँव में या बहुत छोटे कस्बों में ये बात रह गई होगी अब कि भाई अब आई है तो अब फिर जाएगी, एक पराया धन वाली बात, और साथ ही हमें बहुत इसके लिए अब जमा करना शुरू करना है, तो कई लोग जमा करना शुरू कर देते हैं। क्या उस समय ये विचार करना कि भाई अब ये आई है तो बहुत कुछ हमें देना पड़ेगा दहेज में, इस भाव से जब वो चलते हैं तो क्या होगा, या फिर ये सोचते हैं कि आई है, लक्ष्मी आई है और बहुत हमारे परिवार को खुशहाल करेगी, हमारे लिए खुशी लेके आई है, या पूरे परिवार में बहुत माहौल चेंज हो जाएगा। इन दोनों विचारों में जमीन आसमान का अंतर है, कौन सा विचार बेहतर है और क्या करना चाहिए?
देखिए, लड़की को देना पड़ेगा, लड़की भी तो उनकी है ना। और कन्यादान दान तो वैसे ही बहुत फल देने वाला होता है, और अगर वो दे रहे तो वो भरपूर होंगे। पहले ये संकल्प अपने मन में पक्का कर लेना चाहिए कि जितना देंगे उतना भरपूर होंगे, और दे किसी पराये को नहीं रहे, दे अपनों को रहे हैं, तो इसमें देने में बहुत सुख है। रही बात वो कि हमें देना पड़ेगा, अभी से इकट्ठा कर ले, टेंशन मोल ले लें, उसकी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ सहज भाव से होता है। मुझे लोग ऐसा अनुभव सुनाते हैं, आया एक गांव का व्यक्ति कि भाई मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पास केवल 10,000 रुपये। अब मैं सोचा भाई 10,000 से तो आजकल कुछ भी नहीं, 10,000 मान तो 10 रुपये जैसे हो गए शादी के लिए, क्या करूं। तो मैंने तो शिव बाबा को सब कुछ अर्पित किया कि भाई तुम्हारी बेटी है, अब इसकी शादी तो करनी है, अब तुम जो चाहे कर देना, 10,000 में करानी हो उसमें करा देना, बाकी तुम जान लेना। कहा पता नहीं कैसे कैसे लोग आए, देते गए, फर्स्ट क्लास शादी हो गई, हम तो बहुत खुश हुए, हमने लड़की को भी धन्यवाद दिया कि सब तुम्हारे भाग्य से हुआ है बेटा, हमारी इसमें कोई बात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो हर एक अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसलिए मैं इकट्ठा करूं, मैं टेंशन ले लूं, इसकी कोई जरूरत नहीं।
मतलब अभी प्रभु ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, हमें ये टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसने दिया है तो वही सारी व्यवस्था करेगा। वो गीत भी बहुत प्यारा है भ्राता जी कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। एक विशेष बात भ्राता जी, शायद पहले भी मैंने आपसे चर्चा की है, एक मानवीय इच्छा रहती ही है कि मान लीजिए मेरी एक बेटी हुई, अब दूसरी संतान के लिए मेरे मन में होता है, क्योंकि आजकल दो बच्चे ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो मान लीजिए पहली बिटिया हुई, अब दूसरे के लिए कामना रहती है कि यदि बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बेटी और बेटा दोनों मिलके परिवार को बहुत मतलब भरा भरा सा और अच्छा अच्छा सा लगता है। क्या कुछ विशेष ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक्स हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं कि मान लीजिए अब लड़की तो मेरे पास आ गई, एक लक्ष्मी है, अब मुझे एक लड़का चाहिए, या चलिए लड़का आ गया है, अब मुझे एक लड़की चाहिए, क्या कुछ ऐसी विधि हो सकती है?
देखिए, योग अभ्यास से तो सब कुछ संभव होता है, लेकिन योग अभ्यास का लक्ष्य कुछ दूसरा होता है। योग अभ्यास का लक्ष्य तो आत्मा को पवित्र बनाना, ये तो वो मार्ग है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चाहता है तो वो योग अभ्यास कर ले, 1 घंटा रोज और 21 दिन तक करे और देखे रिजल्ट, क्योंकि ये सब प्रभु देन होती है।
बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से योग का अच्छा अभ्यास कर लें और फिर प्रभु पे अर्पित कर दें। वैसे भी शायद गीता में प्रभु ने कहा है कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा। एक विशेष चीज रहते जी, कई बार ये होता है जो मन में मतलब देखने में भी आता है और प्रश्न भी उठता है, कई लोग कुछ टोने टोटके या कई प्रकार की मदद लेते हैं बाहर से भी। जैसे एक मेल हमारे पास आया था, मेरे ध्यान में वो बात याद आ गई कि एक बिटिया हो गई थी उनकी, अब दूसरा उन्हें बेटे की आवश्यकता थी, तो किसी ने कहा कि भाई वहाँ एक महिला में देवी आती है तो आप हमारे साथ चलो। तो वो वहाँ गई, अब पूजा अर्चना शुरू हुई और देवी का आह्वान हुआ और उस महिला में देवी आई, उन्होंने बाल वाल खोले जैसे वो घूमती उमती हैं वो किया और उन्होंने ब्लेस किया कि ठीक है तुम्हारी जो कामना है बेटा होगा तो बेटा होगा। अब इन्हें बेटा हो गया, तो यहाँ ये वाली स्थिति क्या है, हम कैसे समझें भगवान ने दिया या उस माता ने दे दिया, ब्लेस किया, या इनके भविष्य में ही या भाग्य में ही वो था, इस चीज को कैसे समझा?
देखिए सब चीजें मिलकर ही इफेक्ट करती हैं
जी।
आजकल ये सूक्ष्म शक्तियां भी कहीं ना कहीं मनुष्यों को मदद कर रही हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं। बाकी देवी देवता तो सतयुग त्रेता युग में थे, वो अब तो नहीं है, पर कुछ अच्छी आत्माएं इस तरह की मदद भी करती हैं। और इनके अपने पुण्य कर्मों की बात भी है और गॉडली ब्लेसिंग्स भी, तीनों जब साथ मिल गए तो उनको ये संतान उत्पत्ति।
तो क्या ऐसे स्थानों पे जब हमारी ऐसी कोई चाहना रहती है तो जाके मदद ले लेनी चाहिए?
देखिए ज्ञान योग तो पवित्रता का मार्ग है, वो तो आत्मा को संपूर्णता की ओर ले जाने का मार्ग है, लेकिन ये सब जो इच्छाएं हैं ये भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अगर कहीं से किसी को कुछ मदद मिलती है तो लेने में हर्जा कुछ नहीं।
बिल्कुल। और विशेष चीज एक बात और ब्रता जी मैं जानना चाहूंगा, कल जो हमारी एक चर्चा हो रही थी उसमें एक बात मेरे ख्याल में आ रही थी, कल मैं उस चीज को नहीं ले पाया था, कि जब बात यूथ की आती है, जब लड़के लड़कियां निकल जाते हैं स्टडी आदि के लिए और वहां पे किसी भी प्रकार का प्रेशर रहता है, वहां एक फिसलने वाली स्थिति आती है, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम थोड़े से उस मार्ग पे निकल पड़ते हैं। अब मान लीजिए हम निकल गए तो बहुत ज्यादा गिल्ट फील भी होता है, तो क्या हमें वहां से रिटर्न जब हमें होना है तो कैसी एक मानसिक बल लाएं और वो जो एक गलती हमसे हो गई जाने अनजाने में हो गई, उस गिल्ट को कैसे निकालें, क्या पेरेंट्स के साथ शेयर कर लिया जाए, कैसे किया जाए उस चीज़?
देखिए पेरेंट्स के साथ तो ऐसी गलतियां शेयर कोई करता नहीं है
जी, जी।
उनको बहुत लज्जा आती है, लड़कियों को तो खास लज्जाएगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं और उनसे कुछ ऐसा हो गया, ये संभव होता है कि उनसे भी ऐसी गलती हो जाए, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है और गलती भी मनुष्य से ही होती है और उसको करेक्ट भी वही करता है
जी, जी।
तो उनके जो सीनियर हों स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाले, हमारे यहाँ हर सेवा केंद्र पर अच्छी टीचर्स बहने रहती हैं जो हर समस्या का इसी तरह समाधान देती हैं, वो आपकी बात सुनेंगी, आपको हल्का भी करेंगी और आपको गॉडली ब्लेसिंग भी दिलाएंगी, और फिर उस कमी को उस गलती को ठीक करने के लिए एक 21 दिन की योग भट्टी करनी चाहिए अच्छी
जी।
और संकल्प कर लेना चाहिए कि ये गलती अब दोबारा हम कभी नहीं करेंगे, तो 21 दिन योग करके उस गलती के इफेक्ट को समाप्त भी करना चाहिए और आगे के लिए उस गलती से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प भी कर लेना चाहिए।
बिल्कुल, मतलब उसमें फिसलते नहीं चले जाना चाहिए।
फिसलते चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी दूर निकल जाएंगे कि वापिस आना कठिन होगा और फिर वो अपने उस मूल स्थिति को बना भी नहीं पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। कहते चलिए मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। हमारे पास ये पहला मेल आया है सुनीता जी का महाराज से, और ये कहती हैं कि मेरे पति के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्या मैं कुछ विशेष योग का अभ्यास कर सकती हूँ जिससे मेरी पति के साथ मेरी बनने लगे? ये ज्यादातर घर घर
में, ये घर घर में आजकल बहुत हो गया है, रोज 5-7 केस ऐसे आ ही जाते हैं कि हम दोनों की नहीं बनने, क्योंकि तो दोनों ही आ बैठते हैं कि हमारी बन नहीं,
समाधान कीजिए,
क्योंकि दोनों बनाना चाहते हैं। उनमें अच्छी बात ये होती है कि दोनों बिल्कुल मिलना चाहते हैं। आज भी एक युगल ऐसे ही मेरे पास आए और दोनों बिल्कुल मिल जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो काम कर रहा था, ये एक दूसरे पे मनुष्य ज्यादा कमेंट्स करने लगता है, कहीं कहीं एक दूसरे में डाउट करने लगते हैं, पत्नी पति में डाउट कहीं कहीं करती है, कहीं कहीं पति भी पत्नी में डाउट करने लगता है, ऐसे केसेज आजकल हो रहे हैं, तो बनती नहीं, एक दूसरे से दूरी होती जाती है और फिर सचमुच परिवार का या घर का माहौल बड़ा ही खराब सा होता है, वो भी चाहते हैं हम इससे निकल जाएं। लेकिन एक अच्छी बात बहुतों के साथ हुई कि संघर्ष के कारण वो ज्ञान मार्ग पर आए, तो मैं उन्हें हंसता हूँ कि तुम तो बहुत लक्की हो, लड़ते लड़ते भगवान के पास तो पहुंच गए, अब तो लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। तो पहली चीज ये कि संकल्प करें कि अब हमें संघर्ष नहीं करना है, और दोनों ही संकल्प करें कि हमें झुक के चलना है। तीसरी बात, दोनों ही एक दूसरे के सद्गुणों पर जरा दृष्टि डालें, क्योंकि ऐसी लड़ाइयों में उन्हें एक दूसरे के अवगुण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो बिल्कुल बेगुना बेगुण है, ऐसा वो मान लेते हैं, इस मनुष्य में तो कोई गुण नहीं है, पर ऐसा नहीं है।
जी, जी।
हमारी दृष्टि ऐसी अच्छी होनी चाहिए कि अवगुणों में भी गुण ढूंढ ले। कईयों की दृष्टि ऐसी है कि गुणों में अवगुण ढूंढते रहते हैं। एक व्यक्ति शांत है तो कहेंगे बड़ा अहंकारी है, तो वो शांत रहता है बेचारा, उसका बहुत बड़ा गुण है कि बड़ा अहंकारी है, बात नहीं करता है। एक व्यक्ति बहुत खुश रहता है, सारा दिन खिलखिलाता रहता है, इसको अकल ही नहीं है कहाँ हंसना चाहिए कहाँ नहीं। कहीं ऐसी वैसी जगह एक आध बार हंस दिया तो कहेंगे बिल्कुल बुद्धू है, इसको अकल ही नहीं कोई। तो गुणों के साथ अवगुण मनुष्य रीड कर लेता है और उसको अपने चित्त में समा लेता है। ठीक है, बुराई इसमें है। एक व्यक्ति को क्रोध आता है, मान लो, देखिए क्रोध एक ऐसी प्रत्यक्ष चीज है, ऐसा तो नहीं कह सकते वो दिखाई ना दे, वो तो सबको दिखाई देगा। और क्रोध में जब वो व्यक्ति बुरा बोलेगा वो भी सबको सुनाई देगा और उसका इफेक्ट भी होगा। लेकिन इसमें महत्व की बात यह है, देखिए मीरा ने भी अपने एक पद में कहा है, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, यानी दूसरे के जो अवगुण हैं वो हम अपने मन में समा न लें। अभी एक व्यक्ति क्रोध कर रहा कि ये तो है ही क्रोधी, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये व्यक्ति तो है ही अहंकारी, ये अपने अहंकार को कभी पहचानेगा नहीं, कभी नम्र नहीं बनेगा। हम जो ये मान लेते हैं, यानी हमने दूसरे का अवगुण जो चित्त पर रख दिया, इससे भी झगड़े बहुत होते हैं। इसलिए मैं इनको कहूँगा कि बहन ही समझदार होनी चाहिए, जैसा कि प्रतीत हो रहा है, झुक कर चले। और एक छोटी सी चीज बना ले जीवन में कि आज से कम 3 मास तक किसी भी बात पे डिबेट नहीं करेंगे, थोड़ा शांत,
मतलब ये ना करें।
हाँ,
वो भले शुरुआत करें,
वो शुरू करे तो किससे करेगा जब इनको करना ही नहीं है,
वो ताली कहते हाँ, दोनों हाथों से बजते।
तो थोड़ा सा साइलेंट
जी,
और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। मैंने 2-4 को कराया है, हालांकि कईयों के लिए ये काम भारी होता है, चुप रहना, दूसरा बोल रहा और हम चुप रहे, तो लेकिन कुछ लोगों ने किया तो आखिर दूसरे व्यक्ति ने अपनी गलतियों को रियलाइज किया और बहुत जल्दी ठीक हो गए। अगर ये ज्ञान योग के मार्ग पर हैं तो बहन को मैं कहूँगा 20-20 मिनट 3 बार बैठकर अपने घर में योग अभ्यास करें, पवित्र भोजन बनाएं और एक खुशी का माहौल पैदा करें। पवित्र भोजन बनाकर जब अपने पति को खिलाए तो संकल्प करें इससे इनका चित्त भी शांत रहे। इस तरह ईगो जो इन टकराव का, इन संघर्षों का एक मूल कारण है, उस पे नजर रखनी चाहिए। और जो मनुष्य ईगोलेस बनता है, जो नम्र बनता है, वो बहुत सुखी रहता है।
जी, जी।
ये भी सब जानते हैं कि लड़ाई घर में होगी तो सुख तो बिल्कुल दूर चला जाएगा। तो हमें ईगोलेस बनना, और स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे तो ईगोलेसनेस का परम महत्व है। जहाँ ईगोलेसनेस है, जहाँ नम्रता है, वहीं स्पिरिचुअलिटी है। इन चीजों को ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो इनके आपस की जो मनमुटाव है वो समाप्त हो जाएगा।
बिल्कुल भ्रता जी, एक विशेष बात, जैसे आप कह रहे हैं कि परिवार की जो बात है, पति पत्नी की बात है, कई बार ये होता है, आपने कहा चुप रहो, तो चुप रहने से कई बार सामने वाला और अग्रेसिव हो जाता है कि मेरी बात का सामने वाला जवाब क्यों नहीं दे रहा है, तो क्या चुप रहना ऐसी कंडीशन में ठीक है?
नहीं, बातों ऐसे में ये है कि चुप न रहने की बजाय अच्छे शब्दों में बातों का उत्तर दे देना चाहिए, दूसरे की निगेटिव बात को भी पॉजिटिव कर देना चाहिए, हल्के रूप से उत्तर देना चाहिए। वो जो उत्तर दिया जाता है ना एग्रेसिव होकर, क्रोध करके, वो न होकर थोड़ा सा लाइट होकर उत्तर दिया जाए, तो हमने देखा है कि कई जगह संघर्ष को अवॉइड किया जा सकता है।
बिल्कुल, मतलब समझदार होना पड़ेगा और कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ेगा, अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्रता जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, जो परिवार में सुख शांति के लिए आपने हमें दिया है। मित्रों, सचमुच परिवार में यदि सुख शांति हो तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब घर मैं कब जाऊं। और यदि घर में खुशहाली का माहौल ना हो, शांति का माहौल ना हो, तो व्यक्ति को लगता है अरे यार घर जाऊंगा फिर से वही खिटखिट शुरू हो जाएगी, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। एक परिवार का ख्याल आ रहा है मित्रों कि पड़ोसी ने पूछा अपने मित्र से कि क्या बात है, तुम्हारे घर से हंसने की ही आवाज़ आती रहती है। तुम लोग इतने खुश कैसे रहते हो? तो मित्र ने कहा कि मेरी पत्नी जो है ना बड़ी गुस्से के मूड में रहती है, और जब भी उसको गुस्सा आता है उसके हाथ में जो भी आता है वो फेंक के मुझे मारती है, और जब लग जाता है उसका ठीक निशाना तो वो हंसने लगती है, और जब उसका निशाना चूक जाता है तो मैं हंसने लगता हूँ। तो कभी वो हंसती है कभी मैं हंसता हूँ, तो कितनी अच्छी बात है ना। देखिए इतनी बुरी कंडीशन को भी इतनी अच्छी तरह से हैंडल करना, इतने अच्छे से उसे समझना, स्वीकार करना, एक बहुत ही बड़ी बात है, बड़े दिल की बात है। और मैं यही कहूंगा कि सच में समझदारी यही है कि सामने वाले के दोष को ना देखते हुए उससे भी अच्छाई ले लिया जाए तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और समाधान का तो लक्ष्य यही है कि परिवार में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। तो आप खुशहाल रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।